ज्ञान चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहूणं। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रमरनेमिचन्द्रमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परूणम् मोक्षम्। आचार्य कल्प पंडित अरुल में जी लिखित यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीवकांड भाषा टीका है, जो मूल ग्रंथ गोमट सार ग्रंथ पर लिखी हुई है। उसका हम यहाँ हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या है 70, 70 हिंदी वाला 70। ये तो गुजराती वाला नहीं है ना। हाँ, यहाँ हम 15 की गाथा पढ़ने जा रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे। मिच्छोदयेण मिच्छत्तम असद्दहनम तु तच्छत्थानम् एयन्तं विवरीयं विनयं संसयितमन्नाणम्। मिथ्यात्वोदयेन मिथ्यात्वम् अश्रद्धानं तु तत्त्वार्थानाम् एकान्तं विपरीतं विनयं संशयितमज्ञानम्। टीका। दर्शन मुनि के भेद रूप, दर्शन मोनी एक प्रकृति नहीं, वो तो उसके तीन भेद है, उसमें से एक है मिथ्यात्व। तो दर्शन मोनी के भेद रूप मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के अतत्व श्रद्धान है लक्षण जिसका, ऐसा मिथ्यात्व होता है। यानी मिथ्यात्व के उदय में जीव को यहाँ मिथ्यात्व भाव होता है। कर्म का नाम भी मिथ्यात्व कर्म है और जीव के भाव का नाम भी मिथ्यात्व भाव है। यह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उसके उदय में होता है, ऐसा कह रहा है। वैसे दोनों ही स्वतंत्र अपने अपने में है। कर्म का उदय कर्म में अपने से हो रहा है और जीव के भाव जीव में अपने से हो रहे हैं। फिर भी यहाँ कहते हैं कि मिथ्यात्व होता है, तो मिथ्यात्व को पहचानने के चिन्ह क्या है, उसका लक्षण क्या है? तो कहते हैं अतत्व श्रद्धान। जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व बताए है उसका जैसा है वैसा श्रद्धा नहीं होना, विपरीत होना, उसको कहेंगे अतत्व श्रद्धा। पुनश्च वह मिथ्यात्व, अभी उसके भेद बताते हैं। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है उसकी बात यहाँ कह रहे हैं। एकांत, विपरीत, विनय, संशयित, अज्ञान, ऐसे 5 प्रकार का है। कौन कौन से भेद बोलो? एकांत, एकांत, विपरीत, हाँ हाँ, विनय, संशयित और अज्ञान। हाँ, वहाँ जीवादि वस्तु सर्वथा सत्व रूप ही है। सर्वथा शब्द डाला है ना, सर्वथा असत्व रूप ही है, सर्वथा एक ही है, सर्वथा अनेक ही है इत्यादि। प्रतिपक्षी दूसरे भाव की अपेक्षा से रहित, जैनी भी द्रव्य को एक अनेक कहेंगे, नित्य अनित्य कहेंगे, भाव अभावात्मक कहेंगे, भेदाभेदात्मक कहेंगे, परंतु स्यात् यानी किसी अपेक्षा से कहते हैं। यहाँ वस्तु को एक ही स्वरूप और वो भी सर्वथा मानने वाले हैं। प्रतिपक्षी दूसरे जो भाव है उसकी अपेक्षा से रहित है, तो ये वस्तु का सही स्वरूप है नहीं। तो दूसरे भाव की अपेक्षा एकांत रूप अभिप्राय, उसको एकांत कहते हैं, वस्तु एकांत है इसे वो मानते हैं। सच में देखे जाए, रियलिटी में जो है वस्तु अनेकांत स्वरूप है, परंतु ये जो मिथ्या मति है वो उसको एकांत रूप मानते हैं। तो एकांत रूप अभिप्राय ने मान्यता, वह एकांत मिथ्या तो है। पहले पांच नाम बताए हैं, अभी उसका एक एक का स्वरूप बता रहे हैं। एकांत के बाद विपरीत का स्वरूप बता रहे हैं। पुनश्च अहिंसादिक समीचीन धर्म, समीचीन यानी यथार्थ धर्म का फल जो स्वर्गादिक सुख, उसको हिंसादि रूप यज्ञादि का फल कल्पना से माने। क्या कहते हैं? अहिंसादिक समीचीन धर्म का फल क्या है? स्वर्गादिक सुख, स्वर्गादिक यानी अहिंसादि पुण्य रूप जो भाव है वो तो स्वर्ग रूप उसका फल है, और वो जो सचमुच अहिंसा जिसको कहते हैं यथार्थ में, उसका फल तो मोक्ष है। तो जो फल स्वर्गादिक जो फल है वो किसका फल मान रहा है? हिंसा और यज्ञ आदि का फल मानता है। सचमुच वो फल किसका है? तो अहिंसादिक धर्म का फल है, उसको इसने क्या माना? हिंसादि रूप यज्ञादि का कैसे माना? कल्पना से मान लिया। वहां जीव के प्रमाण से सिद्ध है जो मोक्ष, उसके निराकरण द्वारा मोक्ष का अभाव माने। कोई अन्य जो मति है, कोई ऐसा मानते कि मोक्ष विक्ष कुछ है ही नहीं है। वह प्रमाण से खंडित जो स्त्री के मोक्ष प्राप्ति, उसके अस्तित्व वचन से स्त्री को मोक्ष है ऐसा माने। इन्हें स्त्री को मोक्ष होता ही नहीं है उस पर्याय में, फिर भी जो स्त्री को मोक्ष होता है ऐसा मानते हैं, ये सारा क्या है? विपरीत मान्यता है, उसको विपरीत मिथ्यात्व कहेंगे। इत्यादि एकांत अवलंबन द्वारा विपरीत रूप जो अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी अभिप्राय, अभिप्राय ने मान्यता, जो मान्यता विपरीत है उसको विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। पुनश्च
यहाँ पहले और दूसरे में फर्क क्या है? पहले में भी कहते हैं कि एकांत मिथ्यात्व यानी वो ये, और यहाँ पर भी कहते हैं कि एकांत अवलंबन द्वारा, तो दोनों एकांत मिथ्यात्व होना चाहिए कि नहीं? हाँ बोलो बोलो। हाँ बराबर, बहुत अच्छा। यानी एकांत को ही पकड़े लेकिन वो विरुद्ध जैसी है मान्यता, ऐसा देखो। एकांत अवलंबन द्वारा विपरीत जो अभिप्राय, और पहले में तो अनेक अंत है इसकी उसी खबर ही नहीं,
ऐसे भी लेना है। पहले में तो एक ही वस्तु के जो अनंत धर्म है उसको एक ही स्वरूप मानने वाला, अब दूसरे में जैसे पुण्य का फल है स्वर्ग, परंतु इसने पाप का ही फल मान लिया। स्त्री को मोक्ष होता नहीं, इसने स्त्री को मोक्ष मान लिया। अन्य ऐसे बहुत सारी बातें, जैसे केवली को आहार माने, कवलाहार माने, ये सारी कैसे होती है? विपरीत मान्यताएं। यानी मोक्ष किसी के होता ही नहीं मानने वाले, ये भी विपरीत हो गया। अब वैनायिक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। नीचे से तीसरा पैराग्राफ चल रहा है अपना। पुनश्च सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सापेक्षता के रहित पने से, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कोई बात ही नहीं है, उसके बिना ही गुरुचरण पूजन आदि रूप विनय ही से मुक्ति है। ये गुरु की आज्ञा मानो या किसी को गुरु बना दो तो आपको मुक्ति हो जाएगी। गुरु की विनय करो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कोई बात ही नहीं है। गुरु का भी जो विनय कहा है कहीं पर, या सत्समागम की जो उपदेश देता है सत्समागम का, वहां भी गुरु के द्वारा जो उपदेश मिलता है मोक्ष मार्ग का सही उपदेश, उसको सुनकर स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करता है तब मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। किसी को गुरु मान लिया या गुरुपने की श्रद्धा की, इसलिए कोई किसी को मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। यह क्या कहते हैं? गुरु चरण पूजनादि रूप विनय ही से मुक्ति है, यह श्रद्धान वैनयिक मिथ्यात्व है। इसके और भी बहुत सारे भेद हैं कि सब ये सब सारे भगवान हैं। भगवान का तो कोई एक ही लक्षण होगा ना, सर्वज्ञ वितराग है वो भगवान है। अभी ये लक्षण जहां जहां है वो सारे भगवान है, परंतु इस लक्षण का तो कोई अता पता ही नहीं है। और रागी द्वेषी को भी भगवान कल्पना से मान लिया है और सबकी विनय करता फिरता है, तो उसको भी विनय मिथ्यात्व कहा है। हाँ, देव शास्त्र गुरु सब है, हाँ तीनों को ले लेना है। परंतु विनय में किसी व्यक्ति विशेष के प्रति वो तो विनय ही करते हैं, भगवान के सभी को एक जैसा मानकर विनय करना, ऐसा भी ले सकते हैं।
लोग कहते हैं ना कि हम दूसरों के दिल क्यों दुखाएं, अभी तुम्हारे हमारे भगवान है वैसे उनके भी है, तो उनको भी तुम मानो या उनको भी नमस्कार करो। क्यों कि अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी है कुटुंबियों को बुरा न लगे।
हाँ, कल्पित शास्त्रों को सही शास्त्र मानकर उसकी विनय करता है और उसी से मुक्ति होगी। विनय की बात आई ना यहाँ पर, उसको मानना वो विपरीत हुआ है, परंतु विनय की बात है, उसकी विनय करने की बात है, उसको सच्चा मानकर उसकी विनय करना, ये बात यहाँ उतनी ले लेना है। सरिखा गिनता है, हाँ, और उसके प्रति विनय करता है, भगवान मानकर उसको विनय करता है,
तो विनय करता है।
जैसे सच्चा गुरु है ही नहीं है फिर भी उस गुरु के प्रति विनय करेगा, ये भी विनय मिथ्यात्व।
समाज क्या कहेगी इस तरह से।
वैसे तो एक मिथ्यात्व है तो उसमें तो बहुत सारे है उसका, सब आते हैं।
ये क्या है, मिथ्यात्व के अनेक भेद है, उसमें उनको पांच में डिवाइड किया, तो वैसा जिसके विपरीत है उसका अज्ञान भी है कि नहीं, क्योंकि अज्ञान के बिना विपरीतता कैसे होगी। ये तो भाई बहुत स्थूल रूप से उसके विभाजन किए हैं।
जैसे हम वर्ण के पर्याय कितने, पांच ही बताते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं, ऐसे यहाँ सभी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे उसके। अब संशय मिथ्यात्व की बात बता रहे हैं। पुनश्च प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा ग्रहण किया जो अर्थ, ग्रहण करना यानी उसको जानना, अर्थ यानी पदार्थ को जाना, कैसे, कौन सा प्रमाण, आगम का नाम कहाँ लिया,
प्रत्यक्ष आदि में आ गए,
हाँ आदि में आ गया, तो प्रमाण के भेद कौन कौन से, प्रत्यक्ष आदि में क्या है, हाँ प्रत्यक्ष, परोक्ष, हाँ परोक्ष में कौन कौन हो गए, आगम भी प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, तर्क है, अनुमान है, स्मृति प्रत्यय, सारे प्रमाण के भेद है। अपना यह न्याय का विषय नहीं हुआ है, फिर भी प्रत्यक्ष के द्वारा या आगम के द्वारा इतना तो हमें पता है ना। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा ग्रहण किया जो अर्थ, उसका देशांतर में और कालांतर में व्यभिचार अर्थात अन्यथा भाव वह संभव है। इसलिए ये पूरा पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ख्याल में आएंगे। इसलिए अनेक मत अपेक्षा परस्पर विरोधी जो आप्त वचन, उसके भी प्रमाणता की प्राप्ति नहीं है। इसलिए ऐसे ही तत्व है, इस प्रकार निर्णय करने की शक्ति के अभाव से सर्वत्र संशय ही है, ऐसा जो अभिप्राय वह संशय मिथ्यात्व है। क्या कहने चाहते हैं, ये जो हम कोई वस्तु का नाम है या अन्य कोई बातें, प्रत्यक्ष है ना, यहाँ साम्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात है, वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष की बात यहाँ नहीं है। तो हम जो कोई चीजें देखते हैं सुनते हैं, तो देशांतर में ने अन्य देश में और अन्य काल में उसमें अन्यथा भाव हो सकता है, ये लौकिक की बात चल रही। वैसे ही अन्य अन्य जो मत है, जैन मत के अलावा भी अन्य जो मत है, उनके भी प्रमाणता की प्राप्ति नहीं है, यानी इसका ऐसा विश्वास नहीं है कि यही सच्चा है। अन्य अन्य मतों के अन्य अन्य आप्तपना, यानी उनके अन्य अन्य बताने वाले अन्य जीव है और उनका जो कथन है वो अन्य है, उनके मत है अन्य है, उनके तत्व है अन्य है, किसी पर भी इसका विश्वास नहीं है, वो निर्णय नहीं कर पाता है कि ये सच्चा है कि वो सच्चा है, उसका संशय बना रहता है। तो निर्णय करने की शक्ति के अभाव से, ये मूल बात, सर्वत्र संशय ही है, ऐसा जो अभिप्राय वह संशय मिथ्यात्व है। हम उसको देखते हैं पेंडुलम की तरह, यहां से वहां वहां से वहां, संशय, निर्णय नहीं कर पाता ये सच्चा है कि वो सच्चा है। अब अज्ञान मिथ्यात्व, पुनश्च ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से संयुक्त जो एकेंद्रियादि जीव, एकेंद्रियादि जीवों के तो ज्ञानावरण का तीव्र उदय चल रहा है, संगी पंचेंद्रिय जैसा उसका ज्ञान का उघाड़ नहीं है, उनका अनेकांत स्वरूप वस्तु है, इस तरह वस्तु के सामान्य भाव में और उपयोग लक्षण जीव है, इस तरह वस्तु के विशेष भाव में जो अज्ञान यानी उनके ज्ञान की इतनी हीनता है कि वो वस्तु के सामान्य और विशेष भाव रूप से जानने में असमर्थ है, इसलिए उसका जो अज्ञान है उससे उत्पन्न जो श्रद्धान यानी अज्ञान के कारण जो श्रद्धान उसका उत्पन्न हुआ है उसको अज्ञान मिथ्यात्व कहा, क्योंकि उसके ये तो पहचानने की वजह से ज्ञान में उतनी विवेक उतनी शक्ति ही नहीं है कि जो सामान्य या विशेष रूप से वस्तु को पहचाने। इस तरह स्थूल भेदों के आश्रय, क्या कहा, स्थूल भेद, स्थूल भेदों के आश्रय से मिथ्यात्व का पांच प्रकार पना कहा, क्योंकि सूक्ष्म भेदों के आश्रय से असंख्यात लोक मात्र भेद होते हैं। ये असंख्यात लोक क्या होता है दिव्याबेन, आपको पता है असंख्यात लोक किसको कहना, कौन मदद करेगा? हाँ मिली भाई बताओ आप, असंख्यात लोक मात्र भेद होते हैं इसका, हाँ हाँ बहुत अच्छा। एक लोग जब कहते हैं तो वहां हमें संख्या गिननी है ना, ये तो इसको उपमा मान के थे, उपमा दी है, लोक की उपमा दी है। जैसे मान लेते हम एक कटोरी में 1000 चावल है, तो हमने 1000 कहने के बदले कह दिया एक कटोरी, और ऐसे अगर 1000 कटोरी लेते हैं तो 1000 × 1000 हो जाते हैं। वैसे एक लोक में असंख्यात प्रदेश है, तो ये उसका संख्या बताने का नाप है, तो वो जो असंख्यात है उसको और असंख्यात गुणा करेंगे, उसको कहेंगे असंख्यात लोक। एक शब्द ऐसा भी आता है लोक प्रमाण असंख्यात, हाँ तो एक लोक में जो असंख्यात है संख्या उसको कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात, और असंख्यात लोक है ना ऐसा एक लोक दो लोक चार लोक दस लोक, हाँ असंख्यात लोक। इसलिए वहां व्याख्यानादिक व्यवहार की अप्राप्ति है, इतने असंख्यात लोक प्रमाण जो भेद है उसका व्याख्यान करने के लिए असमर्थ है कोई भी। हमने कहा ना ये तो पांच स्थूल भेद है, उसके कॉम्बिनेशंस बहुत हो गए और उसके एक एक के भेद भी बहुत सारे हो जाएंगे। आगे इन पांच के उदाहरण कहते हैं, ये जो पांच प्रकार हमने देखे उसको उदाहरण देके समझाएंगे। 16 नंबर की गाथा, एयंत बुद्ध दरसी विवरीयो ब्रह्म तावसो विनो इंदो विय संसयो मकड़ियो चेवर्णानि एकांतो बुद्ध दर्शी विपरीतो ब्रह्म तापसो विनय इंद्रोपि च संशयितो मस्करी चैव ज्ञानी। ये उपलक्षण पने से कहे है, उपलक्षण ने उदाहरण के तौर पर एक एक का नाम लेके बताया है, वैसे है अनेक, एक का नाम लिया इसलिए ऐसा नहीं समझना वो एक ही उसका एक ही वो उसमें आता है। जैसे बुद्ध का नाम लिया है एकांत में तो अकेले बुद्ध को नहीं लेना, जितने सारे एकांतवादी है उस सबको ले लेना, उनका एग्जाम्पल बताया यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव, उसको कहते उपलक्षण। ये उपलक्षण से कहे हैं, एक का नाम लेने पर अन्य का भी ग्रहण करना, इसलिए ऐसे कहना बुद्धदर्शी, बुद्धदर्शी ने बौद्धमती, उसको आदि रखकर एकांत मिथ्या दृष्टि है, यानी बुद्ध आदि, आदि में जितने अन्य भी है एकांतवादी उस सबको आ गए, जैसे वेदांती है अन्य भी जो है। पुनश्च विवरियो ब्रह्म का ना, यज्ञकर्ता ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्या दृष्टि है, यज्ञ करने वाले और उससे धर्म होता है, मोक्ष मिलता है मानने वाले। पुनश्च तापसी आदि विनय मिथ्या दृष्टि है, ये सारे तापसी यानी वो तो पंचाग्नि तप करने वाले ऐसे वैसे कुछ मानते हैं ना, बहुत सारी बातें। पुनः इंद्र नामक जो श्वेतांबरों का गुरु, उसको आदि रखकर संशय मिथ्या दृष्टि है। पुनश्च मस्करी सन्यासी को, यहाँ मुसलमान लिखा है, मस्करी सन्यासी को आदि रखकर अज्ञान मिथ्या दृष्टि है। वहां तो एक इंद्रियाधिक कहा, परंतु यहाँ तो और अज्ञान, हाँ सब लिए। वर्तमान काल की अपेक्षा से ये भरत क्षेत्र में विद्यमान बौद्धमती आदि उदाहरण कहे हैं। यहाँ जो हो गए हैं या हो है उसकी अपेक्षा से ये उदाहरण बताए हैं। आगे अतत्व श्रद्धान है लक्षण जिसका, ऐसे मिथ्यात्व को प्ररूपते हैं। ये जो मिथ्यात्व का लक्षण ही अतत्व श्रद्धान है, उसकी प्ररूपणा यानी विशेष व्याख्यान अभी करेंगे। ये 17 नंबर की गाथा पढ़ेंगे हम। मिच्छन्तं वेदन्तो जीवो विवरीयदंशनो होदि नयधम्मं रोचे दिवो महुरं खुरसं जहाजरिदो मिथ्यात्वं विदन् जीवो विपरीतदर्शनो भवति न च धर्मं रोचते हि मधुरं खलु रसं यथा ज्वरित। दृष्टांत दिया है, क्या है
ये डॉक्टर लोग को जल्दी समझ में आएगा।
क्या लिखते हैं कुछ समझ में आया? देखो जब हम पढ़ते हैं ना प्राकृत हो या संस्कृत, थोड़ा थोड़ा अर्थ समझने की कोशिश करना, सुनते सुनते अर्थ ख्याल में आ जाएगा। क्या लिखा है? यथा ज्वरित मधुरम खलु रसम न रोचते। ज्वरित है ने जिसको ज्वर है ने बुखार है, हाँ जिसके बुखार है उसको वो मीठी चीज भी कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। ऐसे इस मिथ्या दृष्टि जीव को क्या है, धर्मम न रोचते, धर्म रुचता नहीं है। विषय कषाय की बातें करे तो बहुत रुचती है, उसके लिए हम हमेशा उदाहरण देते हैं, कढ़ाई में तेल उबल रहा है, थोड़ा पानी डालो ना ठंडा करने के लिए, नहीं नहीं डालते। पुरुषों को भी पता है नहीं डालते, क्यों? आग लग जाएगी।
आजकल सबको मालूम,
परंतु उसमें वो पकोड़े भजिया डालो तो अच्छे तल कर ऊपर आ जाते हैं, वो तो अच्छा बनता है ना, नमकीन तो अच्छी बनती है उसमें। ऐसे ही ये जो कषाई जीव है, मिथ्यादृष्टि जीव है, तीव्र मिथ्यात्व जीव है, ऐसा नहीं कि सभी मिथ्या दृष्टियों को नहीं रुचता, क्योंकि मंदता है जहाँ उसके तो रुचता है, तभी वही श्रवण करने के लिए आता है। तो तीव्र मिथ्या दृष्टि तीव्र कषाय जीवों को जिनवानी जैसा शीतल जो है, उपकारी जो है, उसको सुनने से भी वो भड़का हो जाता है उसका, और विषय कषाय की बातें सुने तो बहुत अच्छा मजा आता है, औरों को भी सुनाएगा और बहुत चाव से वो सुनेगा भी और उसमें लीन रहेगा। यही बात यहाँ बताते हैं। देखो अभी हम पढ़ेंगे टीका। उदय आए हुए मिथ्यात्व को वेदयन अर्थात अनुभवता जो जीव, जिसका उदय है उसका अनुभव करता है, ऐसे कहने की पद्धति है। अनुभव या भोगना तो वो अपने भावों को है, फिर भी कर्मों पर आरोप आकर मिथ्यात्व के उदय को भोग रहा, ऐसा कहेंगे। वह विपरीत दर्शन अर्थात अतत्व श्रद्धान संयुक्त है, अयथार्थ प्रतीति करता है, उल्टी मान्यता कहो विपरीत अभिप्राय कहो अतत्व श्रद्धान कहो एक ही बात है। पुनश्च केवल अतत्व ही को नहीं श्रद्धता अपितु, यानी उतने मात्र से ही नहीं होता, और क्या है उसके साथ साथ, अनेकांत स्वरूप जो धर्म अर्थात वस्तु का स्वरूप धारयति इति धर्म, वस्तु जो धारण करती है वो उसका धर्म है। तो अनेकांत स्वरूप जो धर्म है यानी वस्तु का जो स्वभाव है अथवा रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारणभूत धर्म। देखो धर्म हमने बहुत बार ये सुना है, धर्म की परिभाषा क्या है, वत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु स्वभाव ही धर्म है, या सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे धर्म के भी दश लक्षण रूप धर्म। तो यहाँ क्या कह रहे, वस्तु स्वभाव रूप जो धर्म अथवा रत्नत्रय स्वरूप, रत्नत्रय ने सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्यक चारित्र, इसको रत्नत्रय तीन है इसलिए त्रय कहा, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का कारणभूत, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का कारण है और उस रूप जो धर्म है वह नहीं रुचता है अर्थात उसमें रुचिपूर्वक नहीं प्राप्त होता है, यानी तत्वों में श्रद्धा नहीं है और ये जो धर्म है उसमें रुचि नहीं है। यहाँ दृष्टांत कहते हैं जो गाथा में बताया था, जैसे ज्वरित अर्थात पित्त ज्वर सहित पुरुष, वो भी पित्त ज्वर वाला लिया, उसे मधुर मीठा दुग्धादिक रस रुचता नहीं है, वैसे मिथ्या दृष्टि के धर्म रुचता नहीं है। दृष्टांत ऐसा देते हैं कि जो हमारे परिचय में है हम उससे परिचित हैं, इसी वस्तु स्वभाव के श्रद्धान को स्पष्ट करते हैं। 18 नंबर की गाथा, मिच्छा इट्ठी जीवो वैठम पवयणम न सद्दहदि, सद्दहदि असभावम वैठम वा अनुवैठम, मिथ्या दृष्टिर्जीव उपदिष्टम प्रवचनम न श्रद्धाति, श्रद्धाति असद्भावम उपदिष्टम वा अनुपदिष्टम। ख्याल में आया कुछ? उपदिष्ट ने उपदेशित, जिसका उपदेश दिया है उपदिष्ट, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो उपदेश दिए हुए प्रवचन, प्रवचन प्रकृष्ट वचन जिनेन्द्र भगवान के, उस पर श्रद्धा नहीं करता और क्या करता है, असद्भावम जो है नहीं ऐसे भावों पर ऐसे तत्वों को श्रद्धान करता है। कैसे? भले वो किसी ने उपदेशित किए हुए है या बिना भी उपदेश किए हुए, यानी गृहित और अगृहित दोनों ले लिए उसमें, यानी किसी के उपदेश के बिना भी उसके ऐसे ही मिथ्या तो भाव है और उपदेश के कारण भी होते हैं। पढ़ेंगे हम टीका, मिथ्या दृष्टि जीव है वह उपदिष्ट अर्थात अरहंत आदि को ने उपदेशित किया हुआ, उपदिष्ट में किसी ने भी उपदेश ऐसे नहीं है यहाँ तो, हाँ क्योंकि सम्यक दृष्टि तो अरहंत आदि के उपदेश से सम्यक तो प्राप्त करेगा, अरहंत आदि को ने उपदेशित किया हुआ प्रवचन अर्थात आप्त आगम पदार्थ यानी भगवान ने क्या क्या बताया है, तो ये भगवान का स्वरूप देव आगम शास्त्र और पदार्थ, क्योंकि आगम में पदार्थों का ही स्वरूप वर्णन किया है, इन तीनों को नहीं श्रद्धता है क्योंकि प्र अर्थात उत्कृष्ट, देखो शांत और प्रशांत, प्र क्या बताता है अधिक मात्रा में बताता है, उसके अधिकता बताता है, तो उत्कृष्ट है वचन जिसका ऐसा प्रवचन अर्थात आप्त, प्रवचन जिसका वचन उत्कृष्ट है वो प्रवचन यानी आप्त, अरिहंत भगवान को प्रवचन कहा, ये प्रवचन यानी व्याख्यान की ये बात यहाँ नहीं ले रहे, प्रवचन शब्द से तीनों को बता रहे, यानी जिसका वचन उत्कृष्ट है उसको आप्त को प्रवचन कहा। पुनश्च प्रकृष्ट है जो परमात्मा उसका जो वचन सो प्रवचन अर्थात परमागम, प्रवचन का एक अर्थ क्या निकाला, स्वयं अरिहंत भगवान कि जिनका वचन उत्कृष्ट है, दूसरे में जो स्वयं उत्कृष्ट है ऐसे जो परमात्मा उनका वचन वो परमागम। पुनश्च प्रकृष्ट उच्चते अर्थात प्रमाण द्वारा निरूपित किया जाए ऐसा प्रवचन अर्थात पदार्थ। यानी अरिहंत भगवान की वाणी वो प्रमाण है, प्रमाण द्वारा किसका निरूपण होता है, पदार्थों का, तो पदार्थ को भी प्रवचन कह दिया। इस प्रकार निरुक्ति द्वारा प्रवचन शब्द से आप्त आगम पदार्थ तीनों का अर्थ होता है। पुनश्च वह मिथ्या दृष्टि असद भाव अर्थात मिथ्या रूप प्रवचन अर्थात आप्त आगम पदार्थ, उपदिष्टम अर्थात आप्त समान आभास वाले, वो आप्त है नहीं है परंतु कल्पना से ही कल्पित ऐसे उसने आभास वाले जो कुदेव है, उनके द्वारा उपदेशित अथवा अनुपदिष्ट अर्थात बिना उपदेशित उसका श्रद्धान करता है। किसका? खोटे आप्त आगमर पदार्थ का। पुनश्च वादी का अभिप्राय कहने वाली उक्तम च गाथा कहते हैं। गड़पड़थम भादिपयत्थेसु मिच्छा इट्ठी जहावगमं सद्दहतो वियन्नानि उच्चदे जिनवयने सद्दहना भावादो। उसका अर्थ बताते हैं। गड़ पड़ थम्भादि यानी घट पट यानी वस्त्र, स्तंभ यानी खम्बा आदि पदार्थों में मिथ्या दृष्टि जीव यथार्थ ज्ञान से श्रद्धा करता हुआ भी अज्ञानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हम इतने होशियार हैं, हम मेडिसिन की बात जानते हैं, दुनिया की इतनी सारी बातें जानते हैं, ये घर कैसे बनाना जानते हैं, धंधा कैसा करना जानते हैं, तो ये घट पट स्तंभ ने सभी पदार्थों में हाँ उस एक्सपर्ट है। तो मिथ्या दृष्टि जीव यथार्थ ज्ञान से श्रद्धा करता हुआ भी अज्ञानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिन वचन में श्रद्धान का अभाव है। ऐसा सिद्धांत के वाक्य द्वारा कहा हुआ मिथ्यात्व का लक्षण जानकर वह मिथ्यात्व भाव त्यागने योग्य है। उसका भेद भी इसी वाक्य से जानना। वह कहते हैं, अभी उसी का अर्थ बताते हैं। कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम आत्मा में प्रकट होता हुआ वर्ण रसादि की उपलब्धि जो ज्ञान द्वारा जानने की प्राप्ति उसके होते हुए, क्या कहते हैं, उपलब्धि यानी जानना, वर्ण रस आदि को जानकर क्या कर रहा है, उसके बाद कारण विपर्यास, पुनश्च भेदाभेद विपर्यास, पुनश्च स्वरूप विपर्यास को उपजाता है। यहाँ जो अज्ञानी है उसके क्या क्या विपरीतता होती है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी तीन बातें बताई? हाँ, कारण विपर्यास है ना, विपरीतता, कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और स्वरूप विपरीतता। उसका स्वरूप बताएंगे अभी यहाँ पर। वहां कारण विपर्यास पहले कहते हैं। रूप रसादिकों का एक कारण है, क्या बता? हाँ, एक कारण है। सो अमूर्तिक है, नित्य है, ऐसी कल्पना करता है। कारण वे विपरीतता, अन्य कोई पृथ्वी आदि जाति भेद सहित भिन्न भिन्न परमाणु है, वे पृथ्वी के चार गुण युक्त, क्या मान्यता भी? वो परमाणु ही भिन्न भिन्न जाति के हैं। जो पृथ्वी है उसमें चारों गुण है। कौन से चार? स्पर्श रस गंध वर्ण। जल के गंध बिना तीन गुण युक्त, यानी जल में गंध नहीं है, बाकी स्पर्श रस और वर्ण है। अग्नि में रस और गंध नहीं है, उसके दो ही गुण है, ऐसे मानने वाले की बात चल रही है। हाँ, और पवन के एक स्पर्श गुण है, गुणयुक्त परमाणु है, यानी वो परमाणु ही अलग जाति के है, ऐसी उसकी मान्यता है। वे अपनी समान जाति के कार्य को निपजाने वाले हैं, ऐसा वर्णन करता है। रूप रसादि के कारण में उसकी विपरीतता है, पृथ्वी के, जल के, अग्नि के और पवन के अलग अलग भिन्न जाति के परमाणु ही है, ऐसी उसकी मान्यता है। इस प्रकार कारण में विपरीत भाव जानना। पुनश्च भेदावेद उपन्यास कहते हैं, कार्य से कारण भिन्न ही है अथवा अभिन्न ही है, ही लगाया, सर्वथा भिन्न ही है, सर्वथा अभिन्न ही है, ऐसी कल्पना भेदाभेद में अन्यथापना जानना, भेद और अभेद स्वरूप जो है उसमें उसका अन्यथा उसकी कल्पना है। पुनश्च स्वरूप विपर्यास कहते हैं, रूपादिक गुण निर्विकल्प है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है रूपादिक के जानने से उनके आकार से परिणत ज्ञान ही है नहीं, उनका अवलंबन बाह्य वस्तु रूप है। क्या कहते हैं, ये ज्ञान उसको जानने रूप परिणमता है, परंतु यहाँ कहते हैं वो बाह्य वस्तु रूप ही है, ऐसा विचार स्वरूप में मिथ्या रूप जानना, यानी उसका स्वरूप जो है वो जानता नहीं है। रूप रस गंध वर्ण ये तो समझाने के लिए बताया है, वस्तु का स्वरूप जानता नहीं है, स्वरूप के बारे में उसका विपरीतता चल रही है मान्यता में, उसको स्वरूप विपरीतता कहें। इस प्रकार कुमति ज्ञान के बल के आधार से कुशत ज्ञान के विकल्प होते हैं। इनका सर्व मूल कारण मिथ्यात्व कर्म का उदय ही है, ऐसा निश्चय करना। कौन सा कारण विपरीतता में उसने, जैसे रसगंध वगैरह जो है रूप रसगंध वर्ण, वो तो पर्याय है, हमें तो पता है ना उसका कारण क्या है, तो परमाणु की अपनी योग्यता से उसके रूप रस पलटते हैं। पृथ्वी के परमाणु जो अभी स्कंद रूप है, वो तो स्कंद है, कोई एक परमाणु नहीं है, तो वो स्कंद में से परमाणु छूटकर उसके अन्य कोई भी स्कंद बन सकते हैं, यानी परमाणु में कोई विषय अलग अलग भेद नहीं है, इसने वो उसके कारण में ही भेद मान लिया। रूप का कारण क्या है, यानी पृथ्वी के परमाणु से ये उत्पन्न हुआ है, जल के परमाणु से ये उत्पन्न हुए, ये भी मानते हैं ना, ये जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो पंच महाभूतों से हुई, ये सारा क्या है, कारण विपरीतता। उन्होंने उदाहरण के तौर पर ये बिल्कुल स्थूल ऐसा दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल दिया है, कहीं भी कोई कार्य है और उसके कारण संबंधी विपरीत मान्यता है, वो क्या कहेंगे हम, कारण विपरीतता। उपादान से कार्य हो रहा है और ये मानता है निमित्त से ही हो रहा है, ज्ञेय में से ज्ञान आ रहा है, ये तो स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता, उसमें भी वो कॉम्बिनेशन हो जाएगी सब। तीन तो मुख्य भेद बताए यहां पर। आगे सासाधन गुणस्थान का स्वरूप दो सूत्रों द्वारा कहते हैं, 19 नंबर की गाथा, आदिम सम्मतद्धा समयादो आवलित्तिवासे से अनन्न दरुदयादो नासिय सम्मोक्ति सासन खोसो आदिम सम्यक्त्वाद्धा आसमयतः षडावलिरिति वाशेषे अनान्यतरोदयात् नाशित सम्यक्त्वैति सासानाख्यस। आदिम सम्यक्त्व ने क्या, सम्यक्त्व के पहले, अच्छा आदिम सम्यक्त्वाद्धा, अध्यायने काल, आदिम सम्यक्त्व के काल में सासाधन की बात चल रही है। हमें तो यहाँ तो हमें तो हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही जानना है। आदि में ने प्रथम, प्रथम सम्यक्त्व ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व, यानी उपशम, क्योंकि पहले कौन सा होता है, औपशमिक सम्यक तो होता है, असमयता एक समय से लेकर, असमयता यानी एक समय से लेकर कहां तक, षड आवली, छह आवली तक शेष रहने पर अनन्यतरोदयात यानी अनंतानुबंधी में से चार में से किसी के एक के उदय होने से नाशित सम्यक्त्व, सासादन का नाम क्या बताया, नाशित सम्यक्त्व, उसी को सासादन कहते हैं। हाँ देखो अभी टीका पढ़ेंगे तो अर्थ और क्लियर होगा। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के काल में जघन्य एक समय उत्कृष्ट छह आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी चार कषायों में से अन्यतम किसी एक का उदय होने पर, उदय एट ए टाइम एक का होगा, नष्ट किया है सम्यक्त्व जिसने ऐसा होता है उसे सासादन कहते हैं। पुनश्च वा शब्द से, वा शेषे लिखा है ना वा, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के काल में भी सासादन गुणस्थान की प्राप्ति होती है ऐसा गुणधराचार्य कृत, ये नाम सुना है हाँ, क्या लिखा उन्होंने, कषाय प्राप्त, कषाय पाहुड़ की रचना की ना, हम रोज सुबह पढ़ रहे हैं ना जयधवला में, उनका नाम लेते हैं, ऐसा गुणधराचार्य कृत कषाय प्रावृत नामक यति वृषभाचार्य कृत चूर्णी सूत्र जयधवल ग्रंथ का अभिप्राय है। यानी दो अभिप्राय पाए जाते हैं, प्रथम कोई कहते कि प्रथम मात्र प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में से ही ये तो अनंतानुबंधी का उदय होकर सासादन की प्राप्ति होती है, कोई ऐसे भी कहने वाले हैं द्वितीय उपशम वाले भी सासादन में आते हैं, ये जयधवला में ये बात यहाँ स्वीकार है, ऐसे दो ही मत है, हमें कितने मत है उसका ही समझना है, उसमें से सच्चा कौन सा ये निर्णय करने की हमें कोई पात्रता नहीं है। जो मिथ्यात्व से चतुर्थादि गुण स्थानों में उपशम सम्यक्त होता है वह प्रथम उपशम सम्यक्त है। प्रथम उपशम सम्यक्त कहना किसे, तो मिथ्यात्व में से जो सम्यक्त की प्राप्ति होती है, कैसे, कर्मों का उपशम होने होकर, तो मिथ्यात्व से चतुर्थादि, चतुर्थादि में क्या क्या समझना, प्राप्ति होते समय चौथा पांचवा और सातवा होता है, परंतु उपशम सम्यक्त्व के काल में सातवें से छठा, छठे से सातवें हजारों बार होता है, तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन कौन से है, चार पांच छह सात, तो दूसरे गुणस्थान में आने वाला चार से आएगा, चौथे से आ सकता है, पांचवे से आ सकता है और सातवें से आएगा नहीं, छठे से भी आएगा। देखो जो मिथ्यात्व से चतुर्थादि गुण स्थानों में उपशम सम्यक तो होता है वह प्रथम उपशम सम्यक, प्रथम उपशम कहना किसे, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में से कर्मों का उपशम होकर जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसको प्रथम उपशम कहेंगे। और उपशम श्रेणी चढ़ते समय क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है। द्वितीय उपशम सम्यक् दृष्टि होने के लिए पहले ऑलरेडी क्षायोपशमिक सम्यक् दृष्टि है उसमें से द्वितीय उपशम होता है। मिथ्यात्व में से किसी को द्वितीय उपशम हो जाए और किसी को प्रथम उपशम, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व में से सम्यक दृष्टि होता है तो कौन कौन से सम्यक तो होते हो सकते हैं, मिथ्यात्व में से सम्यक तो प्राप्त करना है औपशमिक ही होगा। मैंने क्या पूछा, मिथ्यात्व गुण, मिथ्यात्व में से या तो औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होगा या वेदक सम्यक क्षौपशमिक होगा, दो पॉसिबिलिटी है। हमने मिथ्या तो मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि की नहीं बात पूछी, हाँ। अनादि को तो औपशमिक ही होगा, सादी में भी औपशमिक हो सकता है और वेदक भी हो सकता है, परंतु द्वितीय उपशम होने के लिए कंडीशन क्या है, वो क्षायोपशमिक होना चाहिए और उपशम श्रेणी के सन्मुख वाला जो सात्विक गुणस्थान वाला है वो द्वितीय उपशम करता है।
देखो हमने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था तो उसमें 90वें अधिकार में ये बात बहुत विस्तार से पंडित जी ने बताई थी हमको, यही बात यहाँ पर भी ये समय ज्ञान चंद्रिका टीका उन्होंने रची है ना, तो वही बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। वहां पर भी बहुत खुलासेवार यही बताया है कि कोई जीव मिथ्यात्व में से जो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, ये अनादिकालीन कहो या शादी जो भी होगा, वह मिथ्यात्व में से आ रहा है तो डेफिनेटली एक बार दो बार दस बार हजारों बार करे फिर भी उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही कहेंगे। तो साहब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ बताएं कि वो पहले में पहले तो क्षोपशम सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है, और वह जीव कैसा होना चाहिए कि जो उपशम श्रेणी चढ़ने के सन्मुख मतलब उद्युक्त हुआ है वह जीव जो कर्मों को उपशम आ गया यानी दर्शन मोनी और चारित्र मोनी को, उसको कहेंगे, यहाँ तो दर्शन मोनि की बात है, द्वितीयोपशम सम्यक, ये ध्यान रखना। वहां मिथ्यात्व में आया और यहाँ सम्यक्त्व में से ही सम्यक्त्व में के प्राप्ति की, और वो वही करेगा जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव।
क्षोपशम में से द्वितीय उपशम होगा, यानी उसने दर्शन मोनि का वहां उपशम के अंतर कर उपशम, अब श्रेणी में क्या करेगा, चारित्र मोह की उपशम ना करेगा श्रेणी चढ़ने के पहले, फिर श्रेणी चढ़ के उतरेगा तो भी द्वितीय उपशम का काल लंबा चलेगा उसका। हाँ, आपका प्रश्न है पहले गुणस्थान से प्रथमोपशम सम्यक्त्व करके, प्रथमोपशम हो या वेदक से है, अब यहाँ प्रथमोपशम की बात चल रही है, तो जीव कौन से गुणस्थान में प्राप्त कर सकता है सम्यक्त्व प्राप्त करके, कौन से गुणस्थान में जाता है, तो कोई चौथे में जाएगा जो एक कषाय चौकड़ी का अनुदय करेगा, अभी अभाव यानी अनुदय करेगा, अभी करना नियोग पड़ रहे ना, दो कषाय के अनुदय से वो पांचवे में चला जाएगा, जिसके तीन कषाय का अनुदय हो जाता है उपशम करेंगे तो पहले में जाएगा तो सातवें में जाएगा, सातवें में से अंतर्मूर्त में छठे, वो उपशम का काल भी अंतर्मूर्त है परंतु वो बड़ा अंतर्मूर्त है, उस एक अंतर्मूर्त के काल में सातवें से छठा और फिर सातवां फिर छठा फिर सातवां फिर छठा सातवां, ऐसे कितने बार होगा तो हजारों बार होगा,
और हर छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान
एक एक
अंतर्मूर्त वाला है, उससे कम समय नहीं रहेगा, तो यानी वो अंतर्मूर्त इतना बड़ा है जिसमें हजारों अंतर्मूर्त गर्भित है,
यानी अंतर्मूर्त के भेद बहुत है। अब आगे पढ़ेंगे इस शासाधन की बात। हाँ, गिरने वाले की बात जब आती है, सातवें में से कोई नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता एक्सेप्ट मरण के समय, सातवें में जिसका मरण होता है तो मरण होके सातवें में मरेगा तो देव में ही जाएगा, क्या दूसरे कहीं नहीं जाएगा, नरक में जाएगा। मेरा प्रश्न है सातवें गुणस्थान में मरने वाले कौन कौन से गति में जा सकता है, बोलो भाई, देवगति में, क्यों, हाँ तो क्या हुआ भावलिंगी भाव, हमें नियम चाहिए, बोलो अश्विन भाई, जिसने देवायु बिना मनुष्यायु नरकायु या तीरियंचायु बांधी है तो उसके पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त नहीं होता, श्रेणी की बात छोड़ दो, पांचवा गुणस्थान भी नहीं प्राप्त होगा, तो मुनि बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो सातवें में मरण की बात कर रहे हैं हम, तो सातवें में मरकर नियम से देव में ही जाएंगे, तो पहले ही समय ने, यहाँ तो मनुष्य है मुनिराज है, मरण हुआ तो नेक्स्ट समय में क्या है, वो देव है, गुणस्थान चौथा, पहले मनुष्य ही बांधे वो मुनि होगा ही नहीं, हाँ। वो मरने का सवाल नहीं, वो मुनि नहीं होगा। उसके ऐसे परिणाम ही नहीं, ये सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है।
इसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है, जब भी हमने अभी देखा था कि पहले गुणस्थान से कोई जीव चौथे में जावे, कोई पांचवे गुणस्थान में जावे, कोई सातवें गुणस्थान में जावे, उसके लिए एक कंडीशन भी ऐसी है कि जो सातवें में जाएंगे उनके बाह्य में द्रव्य लिंगत्व होना चाहिए। वैसे ही श्रावक के भी बाह्य जो आचरण है, मतलब वो द्रव्यलिंगी श्रावक होना चाहिए। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, द्रव्यलिंगी
विधि पूर्वक वो मुनि दीक्षा और ये जो अनुव्रत आदि का स्वीकार होना चाहिए,
तो तभी वो जी ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा।
परंतु वो लिया है इसलिए वो जाएगा ही, ये बात नहीं है।
हाँ, और कपड़े पहन के सातवें में जावे ऐसा भी नहीं।
यानी मुनि दीक्षा भी ली है बाह्य में, फिर भी पुरुषार्थ इतना ही होगा कि एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, चौथे में जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुनि दीक्षा लिए इसलिए सातवें में ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं।
क्योंकि अगर हम मानेंगे कि उन्होंने 28 मूल गुण तो यथोचित पालन किया है तो सातवें में ही जाएंगे, तो इसका अर्थ ऐसा हो गया राग करते करते वितरकता हो गई।
तो अभी हम ये 20 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं नहीं नहीं, पहले सम्य दृष्टि हुए, क्योंकि वहां तो गृहित मिथ्या दृष्टि थे। इंद्रभूति का आपका प्रश्न है, तो इंद्रभूति वैदिक ब्राह्मण था, गृहित मिथ्या दृष्टि था, तो इंद्र ने किसी बहाने से वो प्रश्न पूछा था ना, ये तो 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्थिका आदि 9 पदार्थ क्या है, तो आपके गुरु के साथ मैं चर्चा करूंगा कह के वहां आया। उसको किसी बहाने लाना था समोचरण में। समोचरण में आते ही बाहर से उसने मानस स्तंभ देखा, अरिहंत भगवान की प्रतिमा देखी, मान गल गया ने वहां उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। निमित्त क्या है, उपदेश किसका सुना, पूर्वभव की देशना काम, पूर्वभव की देशना थी, सामने जिनबिंब का दर्शन हुआ और उनके तो ये बाह्य निमित्त, वह तो स्व की दृष्टि की और उनको सम्यक्त हुआ। फिर वहां से अंदर चले गए भगवान के सामने जाकर, उन्होंने विधिपूर्वक भगवान मुझे दिगंबरी दीक्षा दे दो, वहां उन्होंने वस्त्र त्याग केश लोच सब कर दिया, दीक्षा ग्रहण की और अंतरंग में स्थिर हुए, तब गुणस्थान सातवां प्रकट हुआ, उसके साथ साथ बाकी सारी रिद्धियां भी प्रकट हो गई उनके,
और फिर दिव्य ध्वनि खिली।
हाँ, फिर हाँ नियम है ऐसा, जो हाँ। भगवान के सामने दीक्षित होता है वही गणधर के सामने,
वही गणधर होते हैं,
गणधर होता है उसके निमित्त से, यानी वो गणधर होता है। हाँ, अभी वाणी तो वहाँ खिरती उनके निमित्त से, वहाँ तो ऑलरेडी उस सभा में तो मुनिराज कोई थे कि नहीं, 12 सभा थी और 66 दिन तक वो सभा चली, तो वहाँ तो मुनियों के कोठे में मुनिराज थे कि नहीं, तो वहाँ ये तो मस्करी नाम का गोशाल, मस्करी गोशाल नाम का था, जो पार्श्वनाथ के गणधर का डायरेक्ट शिष्य था, मुनि अवस्था में वहां विद्यमान थे, और मेरे निमित्त से नहीं खिरी। और ये कौन गुरित मिथ्या दृष्टि कहाँ से चला आया, और उसके यानी उसको कितना गुस्सा आया होगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परंतु वो विशिष्ट जीव जो है वो अन्य मत में था ना।
वो नहीं नहीं किसका उत्तर दे रहे हैं आप?
नहीं नहीं, इसका उत्तर देते हैं कि आपने पूछा कि गणधर क्या सारे अन्य मती होते हैं। हाँ, बात सही है, क्योंकि जो टेपिंग चलता है ना, तो मैं नहीं किसके लिए बोल रही हूँ, इसकी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है।
यानी हमारे यहाँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भी तो रिकॉर्डिंग हो गया।
आपके प्रश्नों का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और मैं डायरेक्ट जवाब दूँ। गोशाल, मस्करी गोशाल
उसका पूरा नाम ऐसा था, वह पार्श्वनाथ भगवान के
गणधरों
का डायरेक्ट शिष्य था, पट्ट शिष्य का और नेक्स्ट शिष्य का हो जाए,
क्योंकि काल थोड़ा था ना,
300 साल
पार्श्वनाथ का और महावीर के बीच वाला काल छोटा था, और वहाँ की आयु भी ज्यादा थी आज के हिसाब से।
अभी करना नहीं।
हाँ, अभी 20 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा। सासाधन गुणस्थान संबंधित 2 नंबर, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में गुणस्थानों का स्वरूप बता रहे हैं, वैसे तो अपने यहाँ विशेष चर्चा हो गई ना, पढ़ेंगे। सम्मत्तरायण पौवय सिहरादो मिच्छ भूमि समभिमुहो नासिय सम्मतो सो सासन नामो मुने अवो सम्यक्त्वरत्न पर्वत शिखरात्मिथ्यात्व भूमि समभिमुख नाशित सम्यक्त्वह स सासन नामा मंतव्यः। सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत से शिखर से मिथ्यात्व रूपी भूमि के समभिमुख, अभी भूमि पर गिरा नहीं है, सन्मुख है, पर्वत से छूटा है, अभी नीचे गिरा नहीं, आया नहीं है, बीच में लटक रहा है, वो कैसा है? नाशित सम्यक्त्व, पहले भी शब्द आया था ना, सम्यक्त्व का जिसका सम्यक्त्व नष्ट हो चुका है ऐसा, उसको सासन नामा मंतव्य, उसको जानना चाहिए सासादन नाम से। टीका, जो जीव सम्यक्त्व परिणाम रूपी रत्नमय पर्वत शिखर से, रत्नमय पर्वत कहा इसको, सम्यक्त्व हो चुका था फिर भी उससे मिथ्यात्व परिणाम रूपी भूमि के सन्मुख होता हुआ, यानी वो नियम से मिथ्यात्व को पहुंचने वाला ही है, बीच में से उल्टा फिर जंप मारकर ऊपर नहीं जाने वाला, सन्मुख होता हुआ गिरकर जितना अंतराल का काल, बीच में जो ट्रांजिट पीरियड है उसका छूट गया है और अभी पहुंचने के लिए जितना काल लगेगा, कितना है? एक समय आदि, यानी एक समय से लेकर छह आवली पर्यंत है, यानी अधिक से अधिक काल छह आवली, उसमें वर्तता है वह जीव, नष्ट किया है सम्यक्त्व जिसने, ऐसा सासादन नाम धारक जानना। ये हमने दो कथाएं सासादन संबंधी पढ़ी। आगे सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का स्वरूप चार गाथाओं द्वारा कहते हैं, तीसरे गुणस्थान संबंधी विवेचन चलेगा। गाथा नंबर 21।
सम्मामिच्छुदयेन जत्तन्तरसौवघादिकज्जेन नयसम्मम्मिच्छं प्रिय सम्मिस्सोहोदि परिणामो मिम्यग्मिथ्यात्वोदयेन च जात्यन्तरसर्वघातिकार्येण न च सम्यक्त्वं मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणाम।
देखो जात्यंतर, जाति अंतर, जैसे हम भाषांतर देशांतर कहते ना, तो जात्यंतर है अन्य जाति का, अर्थात जुदी ही एक जाति के भेद वाली जो सर्वघाती कार्य रूप सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोह की प्रकृति। दर्शन मोहनी की हमने अभी तो मिथ्यात्व प्रकृति देखी है, अब ये सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है वो जुदी ही जाति की है, वह भी सर्वघाती है। सर्वघाती का अर्थ क्या है? अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात, यानी सम्यक्त्व का पूर्ण घात करने वाली। सर्वघाती कार्य रूप सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोह की प्रकृति, उसके उदय से मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवत केवल मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं होते और सम्यक्त्व प्रकृति के उदयवत केवल सम्यक्त्व परिणाम भी नहीं होते। जहां मिथ्यात्व दर्शन मोने की तीन प्रकृतियां हैं, एक है सम्यक प्रकृति, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के एक उदय में मात्र मिथ्यात्व परिणाम है, सम्यक मोहनी के उदय में यानी सम्यक प्रकृति के उदय में वहां पर सम्यक्त्व परिणाम चल रहा है क्षोभ्रम सम्यक्त्व में। उस कारण से उस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का कार्यभूत जुदी ही जाति रूप सम्यक मिथ्यात्व परिणाम मिलाया हुआ मिश्र भाव होता है ऐसा जानना। यानी सम्यक्त्व के उदय में मात्र सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व के उदय में मात्र मिथ्यात्व, परंतु ये तो जुदी ही जाति का परिणाम है, न मिथ्यात्व है न सम्यक्त्व है, भेल मिसल वाला कोई अन्य जाति का परिणाम है।
यानी यहाँ पर क्लियर कट बता रहे हैं कि वहाँ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों ही नहीं है,
यानी दोनों ही है ऐसा नहीं कहना।
हाँ
आपने वही बराबर था उसी को।
देखो यहाँ तो बात हमने पहले देखी थी, मैं दो मिनट अधिक लूंगा अभी, क्योंकि ये बात बहुत बार गड़बड़ी पैदा करती है। हमने देखा था जब किसी जीव को उपशम सम्यक तो होता है तो दर्शन मोनी के तीन भेद हो जाते हैं। एक जो पहला मिथ्यात्व था वैसा ही मिथ्यात्व रहता है, और उसका अनंतवा भाग हीन होकर जो कोई परिणाम जो कोई कर्म रहेंगे उसको सम्यक मिथ्यात्व कहेंगे, और उसके भी अनंतवा भाग हीन होकर जो कुछ बाकी रहे वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक्त्व होता है और मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व होता है। यहाँ तो सम्यक मिथ्यात्व नामक जो बीच वाली प्रकृति है, ना उसमें मिथ्यात्व का कोई अंश है ना सम्यक्त्व का कोई अंश है। कोई लोग क्या मानते, थोड़ा सा सम्यक्त्व होगा थोड़ा सा मिथ्यात्व होगा, ऐसा सम्यक मिथ्यात्व है क्या? नहीं, ऐसा है ही नहीं। ये यहाँ बार बार बताते जात्यंतर परिणाम। तो ये जात्यंतर परिणाम यानी बिल्कुल जुदे जात का परिणाम है, वो कैसा है? क्योंकि अभी बोलूंगा तो कल तो गुस्सी का स्वाद आपके मुंह में रहेगा, इसलिए कल उसकी बात चले।
जावाणी के ज्ञान ते तुझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। नलिन भाई।